नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलार्णं च सव्येषिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, दूसरा पाठ प्रारंभ करेंगे। नमोकार मंत्र एवं परमेष्ठी। विषय परिचय। प्रत्येक धर्म का एक मूल मंत्र हुआ करता है, वही मंत्र उस धर्म का मूल आधार स्तंभ होता है। जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार है। इस पाठ में नमोकार मंत्र से संबंधित जानकारी देने वाले 10 रोचक प्रश्नोत्तर दिए हैं। प्रश्न पहला, कंटिन्यू रखा है क्या? हाँ, 11वां। जैन धर्म का मूल मंत्र कौन सा है? जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार है। अपन पंच नमोकार मंत्र ऐसा कहते, पंच शब्द और जोड़ देते। पंच का क्या तात्पर्य? पांच पद हैं, पांच परमेष्ठी, एक एक परमेष्ठी के एक एक पद के एक एक पद का एक एक मंत्र है। तो नमो अरिहंतानम एक पद हुआ, तो आर इस पद में, इस मंत्र में अरहंत को नमस्कार किया है। पांच पदों में से किसी भी मंत्र पद को लेकर के अपन जाप कर सकते हैं। कभी नमो अरहंता नम का ही किया, कभी नमो सिद्धानम का किया, कभी नमो आयर्यानम का किया, कभी नमो वज्झायानम का किया, कभी नमो लोये सवसावनम का भी किया, तो भी ऐसा कर सकते। यदि एक का करते हैं तो वह नमस्कार मंत्र कहलाता है, पंच नहीं जोड़ेंगे, वह नमस्कार मंत्र है। पार्श्वनाथ भगवान कुमार अवस्था में हाथी पर बैठ के जा रहे थे और एक व्यक्ति वहां लकड़ी काट रहा था। उस लकड़ी के भीतर दो सांप थे, सर्प थे। काटते समय कुमार का ध्यान उधर गया तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि इसके भीतर दो सांप हैं। तो तुरंत उनको दया आई, तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों की दया तो बहुत बड़ी दया होती है, हर प्राणी की वो रक्षा करना चाहते हैं। तुरंत जाकर के उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया कि इस लकड़ी को मत काटो, इसमें दो सांप है बैठे हुए हैं। ऐसा कहने पर भी उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। अरे हमको तो दिख नहीं रहे हैं और तुम कहते हो सांप है। बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आया और बार बार कहने से उनको क्रोध आया, क्रोध आया। और उस गुस्से में क्या कर दिया उन्होंने, लकड़ी को काट ही डाला। तो लकड़ी को काटते ही उन दोनों लकड़ियों में से दो सांप निकल बाहर आए और वो कट करके बाहर आए। तब उन्होंने इतना कहने पर भी नहीं माना तो पार्श्वनाथ को क्या हुआ, देखो सांप निकले नहीं, निकले हैं ना, ये मर गए, देखो अब मरेंगे, तुमको ही पाप लगेगा। ये उन दोनों सांपों को मरण करते वक्त उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, क्या पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाया क्या पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र और पंच नमस्कार मंत्र एक ही बात है। नमोकार मंत्र सुनाओ, नमोकार जिसमें पांचों पदों में नमो 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 पांच बार आया है उस मंत्र का नाम है नमोकार मंत्र। परंतु पंच नमोकार मंत्र सुनाओ कहने से पांचों पद सुनाना पड़ेगा, नमोकार मंत्र सुनाओ कहने पर एक कोई भी पद सुनाया जा सकता है। तो वो पार्श्वनाथ तीर्थंकर कुमार हाथी से नीचे उतरे, उन्होंने नहीं माना, सांप दोनों कट गए और दया आई, जा करके उन्होंने पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, क्या नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाया क्या पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। यही मालूम नहीं है अभी। हाँ नहीं, वो नहीं पूछ रहे। पार्श्वनाथ ने पांचों पद सुनाया क्या कोई एक पद सुनाया, ये प्रश्न है। देखो गलत है, देखो ये समझदारी गलत है। गलत क्यों है अभी बता रहे हैं, सुन लो। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय केश लॉन्च करके दिगंबर दीक्षा लेते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों को, नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं ना, ओम ओम बोलते हैं क्या, ओम बोलते हैं उसके साथ। ओम बोलोगे तो पांचों परमिष्टि आ गए, ओम भी बोलोगे साथ में तो पांचों परमिष्टि आ जाते हैं। तीर्थंकर भगवान कभी भी पांचों पदों का नाम लेते नहीं हैं। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों का सिद्धांत है, ये सिद्धांत को ध्यान में रखना है। तीर्थंकरों का ये सिद्धांत है, हम लोगों का अलग बात है, सामान्य जीवों का अलग बात है। सामान्य जीव पांचों पदों का स्मरण करके दिगंबर दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने से पहले भी देखो, तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो कोई मुनि महाराज सामने आए नमस्कार करते हैं क्या, क्यों नहीं करते, फिर मंत्र तो पढ़ते हैं और नमस्कार नहीं करते सामने आने पर। नमस्कार करते हैं क्या, वो दो चारण रिद्धि मुनि आए और महावीर भगवान कुमार अवस्था में थे, वो खेल रहे थे, उस बालक को उन्होंने देखा, इन्होंने भी उनको देखा, नमस्कार किया क्या। कहीं भी किसी भी शास्त्र में गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर उनको मुनियों को नमस्कार किया हो ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा। सारे शास्त्र पढ़ डालो कहीं भी नहीं आएगा ये, तीर्थंकर भगवान मुनियों को नमस्कार नहीं करते। तो मुनियों को मुनि नहीं मानते क्या, मुनियों को मुनि मानते हैं, मुनियों को असयमी नहीं मानते, गृहस्थ नहीं मानते। मुनि दिख रहे हैं तो मुनि ही कहेंगे ना, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही सम्यक दृष्टि है तीर्थंकर। वस्तु स्वरूप जैसा दिखता है वैसा ही कहते हैं। मुनियों को ही नमस्कार नहीं करते हैं तो ये सोचो कि उन दो सांपों को मंत्र सुनाते समय पांचों पद सुनाया क्या, एक पद सुनाया, कौन सा पद सुनाया फिर? नमो अरंतनम पहला वाला किसको सुनाया? नमः सिद्धेभ्यः, ओम भी नहीं जोड़ा उन्होंने, नमः सिद्धेभ्यः कहकर दोनों को मंत्र सुनाया और उनको देवगति का बंध हुआ, देवगति में वो पैदा हो गए। और दीक्षा लेते समय किस मंत्र का जप किया, किसको स्मरण किया, किस परमिष्टि को स्मरण किया, देखो दीक्षा लेते समय में भी वे संसार में रहने वाले अशुद्ध आत्माओं का नाम नहीं लेते। अरहंत भगवान शरीरधारी हैं, अशुद्ध आत्मा हैं, अभी उनका द्रव्य, उनका गुण, उनकी पर्यायें शुद्ध नहीं हैं। जिस आत्मा की द्रव्य गुण पर्यायें सर्वथा शुद्ध हैं, चारों ओर से असमंतात परिशुद्ध हैं, उस आत्मा को स्मरण करते, वो उत्सर्ग मार्गी होते, उत्सर्ग, उपसर्ग नहीं, उत्सर्ग, उत्सर्ग मार्गी यानी का मतलब ये होता है कि वे अपवाद मार्ग को स्वीकार नहीं करते, यानी संसारी अवस्था में रहने वाली आत्माएं शुद्ध आत्माएं नहीं होती, परिशुद्ध आत्मा ही वंदनीय है। परिशुद्ध आत्मा की वंदना करने से ही हम परिशुद्ध होते हैं, इस प्रकार उत्सर्ग विचार से वो सोचते, उत्सर्ग विचार होता है। और वे केवल शुद्धों को ही जब भी स्मरण करें शुद्धों का स्मरण ही करते, जब भी नमस्कार करें शुद्धों को ही नमस्कार करते हैं। कितने परमिष्टियों को तीर्थंकर नमस्कार नहीं करते? चार को, अरहंत को, आचार्य परमिष्टि को, उपाध्याय परमिष्टि को और साधु परमिष्टि को तीर्थंकर नमस्कार नहीं करते, गृहस्थ अवस्था में भी और मुनि अवस्था में भी। वो स्वयं मुनि भी बन जाए तो कोई मुनि आ गया ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? पार्श्वनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में, तीर्थ काल में मुनि परंपरा तो चल रही थी। भगवान महावीर को रास्ते में कई मुनि लोग मिले होंगे विहार करते समय सहज रूप से, तो क्या परस्पर में नमस्तु महाराज करते थे? वो भी साधु परमिष्टि, ये भी साधु परमिष्टि, दोनों ही साधु परमिष्टि हैं, दोनों का मिलान हुआ, परस्पर में वंदना होती थी क्या? वो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं करेंगे। और वो करते भी थे लेकिन ये नहीं करते थे। चारण रिद्धि मुनि तीर्थंकर बालक के पास आकर के उनको देखा तो अपने मन में रहने वाली जो शंकाएं हैं, तात्विक शंकाएं, वो दूर हो गई। तीर्थंकर जो भी जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही उनके पास तीन ज्ञान होते, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और तीर्थंकर जो ही गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि बनते, मुनि होते ही उनको होते ही मन परे ज्ञान प्रकट होता है। दीक्षा स्वयं, स्वयंभू, स्वयं ही लेते, किसी से दीक्षा नहीं लेते, क्योंकि वे तीर्थ नायक हैं। नायक किसी का सहारा नहीं लेता। चक्रवर्ती को किसने चक्रवर्ती बनाया? चक्रवर्ती पद पर किसने बिठाया? क्या वो चक्रवर्ती था बिठाने वाला, राज्याभिषेक करने वाला, वो क्या चक्रवर्ती रहते हैं? एक राजा अपने राजकुमार को राजा बना सकता है, ये तो सामान्य बात है। चक्रवर्ती कौन? भरत। और उस राज का मालिक कौन थे पहले? उनके पिता। तो पिताजी ने चक्रवर्ती पद दिया क्या? तो ये पद कहां से प्रकट हुआ? किसने चक्रवर्ती बनाया उनको? हाँ, अपना पुण्य चक्रवर्ती बना देता है, अपना पुण्य तीर्थंकर बना देता है। ये देने लेने के पद नहीं है, आचार्य पद जैसी। आचार्य पद तो दिया जाता है, लिया जाता है, स्वीकृति दो में होती है। चक्रवर्ती पद और तीर्थंकर पद, स्वीकृति होती है दो में? दो में स्वीकृति नहीं होती। आपको मैं तीर्थंकर मानता हूं और आज से आप तीर्थंकर कहलाए, ऐसा किसी ने कहा? हाँ ठीक है, हमको तुमने तीर्थंकर माना और तुमने जो तीर्थंकर पद दिया है उसका निर्वाह हम करेंगे। ऐसे तीर्थंकर पद लेने देने की है क्या? लेकिन आचार्य पद लेने देने की। गुरु रहते हैं तो अपने आचार्य पद को छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं वो संलेखना के टाइम में। शिष्य को गुरु बना देते हैं, आचार्य बना देते हैं और स्वयं शिष्य बन जाते हैं। गुरु कौन? जो बड़े होते हैं उनको गुरु कहते हैं, बड़े का नाम गुरु और लघु का नाम शिष्य। और जब तक इन दोनों का मिलान नहीं होता, वे दोनों ही अगुर लघु रहते हैं। न गुरु रहते हैं न लघु रहते हैं, अगुर लघु। आचार्य पद कौन देते हैं? गुरु देता है। पहले कोई आचार्य हो तो अपने आचार्य का मतलब क्या? 36 मूल गुणों को पालन करने की क्षमता किसी के पास होना चाहिए और उस क्षमता को देखकर गुरु शिष्य को आचार्य पद प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको संलग्ना लेना है, साधु बनकर रत्नत्रय को साधना है, क्योंकि यह आचार्य पद विकल्प कारक है, ये शुभोपयोग का प्रतीक है, शुद्धोपयोग में ये जाने नहीं देता, आत्मा की आराधना करने नहीं देता, ये विकल्प पैदा करने वाला पद है, इसमें संलग्ना नहीं हो सकती। संलग्ना ले लिया तो उसमें निर्विकल्पता चाहिए, बहुत निर्विकल्पता चाहिए। और वो निर्विकल्प आचार्य पद को रख करके कैसे निर्विकल्प हो सकते? नहीं हो सकते। संलग्ना ले ली तो शिष्यों का जो समाल, उनको प्रायश्चित देना, दीक्षा लेना, ये विकल्प रख करके संलग्ना ले सकते हैं? संलग्ना लेने के बाद क्या किसी को दीक्षा दे सकते हैं? संलग्ना लेने के बाद क्या किसी को प्रायश्चित दे सकते हैं? संलग्ना लेने के बाद क्या संघ का विकल्प कर सकते हैं? हाँ, आचार्य पद पर जब हम नहीं रहते हैं तब साधु कहलाते, जब आचार्य पद पर आ जाते हैं तब हम साधु नहीं कहलाते, आचार्य कहलाते हैं। आचार्य पद से भी श्रेष्ठ साधु पद है। परमार्थ की दृष्टिकोण से, परमार्थ की दृष्टिकोण से कौन सा पद श्रेष्ठ है? साधु पद के बिना अरहंत बनना संभव ही नहीं। कोई भी आचार्य अरहंत नहीं बन सकते, क्योंकि अरहंत पद निर्विकल्प समाधि में डूबने के बाद ही प्राप्त होता है। निर्विकल्प देखो कई लोगों को ये मालूम नहीं है निर्विकल्प क्या होता। विकल्प दो प्रकार के होते, अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प। अशुभ विकल्प पंचेंद्रिय विषय कषायों से संबंधित होते और शुभ विकल्प धर्म से जुड़े हुए होते हैं, संघ से जुड़े हुए होते हैं, अपने व्रतों से जुड़े हुए होते हैं, अपने व्रतों की बाह्य प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं, ये शुभ विकल्प कहलाते हैं। दो प्रकार के विकल्प, अशुभ विकल्प शुभ विकल्प। अशुभ विकल्प में परिग्रह का संबंध है, शुभ विकल्प में धार्मिक क्रिया अनुष्ठान पर का कल्याण इत्यादि का संबंध है। इन दोनों प्रकार के विकल्पों को जहां हम देख नहीं सकते, दोनों का अभाव है, उसका नाम निर्विकल्प है। निर्विकल्प यानी ये ध्यान अवस्था। तो आचार्य परमिष्टि आचार्य पद पर जाने के बाद ध्यान नहीं करते हैं क्या? करते हैं। उनको शुद्धोपयोग नहीं होता है क्या? होता है। लेकिन जब तक वो शुद्धोपयोग में रहते हैं, निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं, तब तक वे संघ के जिम्मेदार नहीं रहते। यानी एक घंटा सामायिक करना है तो संघ से, संघ के विकल्प से रहित होते हैं वो। न गुरुर न शिष्यो, न गुरुर न शिष्यो, न हीनो न दीनो, सिदानंद रूपम नमो वीतरागम। वीतराग अवस्था में डूबने के लिए पर का विकल्प त्याग करना पड़ता है। पर विकल्प का त्याग किए बिना शुद्धोपयोग नहीं होता, निर्विकल्प समाधि में डूब नहीं सकते। तो आचार्य जो होते हैं, ये आचार्य केवल आचार्य तब ही कहलाते हैं जब वे प्रवृत्ति में रहते हैं, तब आचार्य। आचार्य परमिष्टि ध्यान में बैठ गए तो वह आचार्य नहीं है, साधु परमिष्टि हैं वो। आचार्य पद शुभ विकल्पात्मक है, निर्विकल्पात्मक नहीं है वो, शुभ विकल्प रूप है। शुभ विकल्प क्या? तो शिष्यों का कल्याण करने का विकल्प। कोई शिष्य आए और प्राश्चित पूछने लगे, उनको प्राश्चित देना पड़ेगा। कोई शिष्य आए दीक्षा के लिए पूछ रहा है तो दीक्षा का विकल्प करना पड़ेगा, उनके संबंध में सोचना पड़ेगा। दूसरे के संबंध में सोचने वाले आचार्य परमिष्टि होते, साधु परमिष्टि दूसरे के संबंध में नहीं सोचते। यदि सोचने लग जाए तो वो फिर आचार्य साधु नहीं है। जो दूसरे का विकल्प ले लेते हैं जिम्मेदारी के रूप में, तुमको दीक्षा दे दूंगा, ये लो, ऐसी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो वो साधु नहीं है, वो आचार्य कहलाए। फिर तो निभाना ही पड़ेगा। कब तक निभाना पड़ेगा? जब तक तुम्हारी समाधि नहीं होगी, समाधि का समय नहीं आएगा, तब तक निभाना पड़ेगा। और साधु परमिष्टि कैसे रहते हैं? मुझे आचार्य पद ना मिले इसकी भावना भाते रहते हैं, मुझे आचार्य बनना न पड़े ये भावना भाते रहते हैं। जहां झगड़ा है वहां परमार्थ, जहां ऐसे विचार हैं वहां परमार्थ है, वहां धर्म है, वहां व्रत है, वहां मार्ग है, वहां मोक्ष मार्ग रत्नत्रय स्वरूप मार्ग है। लिखा है भगवती आराधना में, जो आचार्य पद उपाध्याय पद आदि की अपेक्षा रखते हैं वे प्रशस्त निदान शल्य वाले कहलाते हैं। शल्य शल्य है वो, प्रशस्त निदान शल्य। लेकिन शल्य तो है, मान कषाय के वशीभूत होकर, मान कषाय के वशीभूत होकर इन पदों की अपेक्षा करना मान कषाय के वशीभूत होकर, तो इसका प्रशस्त शल्य है इसका मतलब ये न अर्थ नहीं कि इसको किया जा सकता है। ये पद मान कषाय की उत्पत्ति में निमित्त बन सकते हैं, और साधु मान कषाय होते नहीं हैं। यदि मान कषाय आ जाए तो फिर आचार्य बनने का मतलब क्या, मैं बड़ा बनूं? इसका मतलब छोटे लग रहे हो। तो बड़े बनने की अपेक्षा है, छोटे लग रहे हैं, तो बड़े बनने की जो कामना है ये मान कषाय उदय हुए बिना हो ही नहीं सकता। देखो कैसा है मोक्ष मार्ग, यहां पर तो कषाय छोड़ना है, ये मोक्ष मार्ग है। परमार्थ को लेकर, धर्म को लेकर की भी अगर कषाय उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर डूब गया सब, साधु बनना व्यर्थ हो जाएगा। ऊपर चढ़ने की अपेक्षा से दो सीढ़ी हैं, सेकंड सीढ़ी उपाध्याय की और थर्ड सीढ़ी आचार्य की। दो सीढ़ी चढ़ करके हम आचार्य बन जाएं, ये कल्पना, ये आशा, ये मान कषाय की उत्पत्ति के बिना नहीं होता। जिस साधु के पास 36 मूल गुणों को धारण करने की क्षमता है वो भी कहते हैं कि मुझे आचार्य नहीं बनना है, क्योंकि वह विकल्प का कारण है, उसमें मेरी साधना नहीं होती। वैसा बन जाऊं तो कोई फायदा नहीं है मुझे, ऐसे विचार करते। उपाध्याय पद भी ऐसा ही, पढ़ाने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो इन पदों को लिए बिना क्या काम नहीं कर सकते, फिर ये घोषणा क्यों चाहिए आपको? इस घोषणा के पीछे मान कषाय है, इसलिए अपेक्षा होती है। और इसको इसको क्या कहा, प्रशस्त शल्य कहा। ये प्रशस्त शल्य मान कषाय के वशीभूत होकर के आता है, इसलिए यहां पर मार्दव धर्म बच नहीं पाएगा। साधु हैं तो 10 धर्म से युक्त होना चाहिए, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये क्या है सभी ये धर्म? देखो 10 धर्म में 10 तो गिनती में 10 हैं, 200 धर्मों की उत्पत्ति। चार पहले के देखो, उत्तम क्षमा, मार्दो और आर्जो, शौच, यहां तक ये किसके अभाव में प्रकट होते, कषाय के अभाव। अगर ये कषाय के अभाव में चार धर्म प्रकट हो गए तो शेष धर्म तो बिना बुलाए आ जाते। जहां कषाय नहीं है वहीं धर्म होता है। जैन धर्म ऐसा है, जैन बनना बहुत टेढ़ी खीर है। यहां पर तो समर्पित रहना पड़ता है, किसके लिए? चार कषाय मेरे पास न हो, कभी कषाय मेरे से स्पर्श न कर सके, ऐसी धारणा, ऐसे समर्पण के साथ यदि हम साधु बनते हैं तो ये उत्तम क्षमा आदि चार धर्म प्रकट होते हैं। और जहां पर चार धर्म है वहां पर सत्य तो होता ही है। जहां कषाय है वहां सत्य होता है क्या? जहाँ कषाय है वहाँ संयम हो सकेगा क्या? जहाँ कषाय है वहाँ पर तप हो सकेगा क्या? जहाँ कषाय है वहाँ आकिंचन हो सकेगा क्या? त्याग हो सकेगा क्या? ब्रह्मचर्य आ सकेगा क्या? सबका उत्तर नहीं 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 नहीं, ये छह धर्म नहीं आ सकते। साधु क्यों बनना होता है? कषाय छोड़ने के लिए या कषाय बढ़ाने के लिए? कषाय छोड़ना धर्म है, ये कह करके कषाय छोड़ने के लिए तो इस पद पर आ जाते हैं। यहां आने के बाद भी कषाय हो गई तो फिर साधु पद से भी वंचित होना पड़ता है। तो कषाय यूं आ जाती है, छोटे हैं तो मैं बड़ा बनूं, तो ये भौतिक विचार है, ये भौतिक विचार है, मैं बड़ा बनूं, ये भौतिक विचार हो गया। भौतिक विचार से साधु अपने साधु पद को भी खो जाएंगे, और ऊपर से अपन घोषणा के साथ यदि कोई पद भी अपने जीवन में ले लिया तो वो पद भी नीरस रहेगा, गुणहीन रहेगा। ऐसा ही जैन धर्म है क्या? नहीं, साधु पद ही जब गुणहीन हो जाता है कषाय आने से, फिर आचार्य पद क्या कषाय सहित रहता है? जो आचार्य परमिष्ठी होते हैं उनमें कोई कषाय होती है? उनको तो 10 धर्म मूल गुण के रूप में पालन करते हैं। आचार्य पद के मूल गुण में आता है ना 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, 3 गुप्ती, और कितना, ये 36 हो जाते हैं ना, उसमें 10 धर्म है क्या? नहीं, आचार्य के पास तो 10 धर्म होता है। 10 धर्म इसलिए होता है, आचार्य बनने के बाद भी 10 धर्म इसलिए होता है कि उनके पास कषाय नहीं है। कैसी कषाय नहीं है? मैं आचार्य हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार की विचारधारा में वो बह नहीं सकते, इतना कंट्रोल रहता है वहां, कितना संयम। वहां चल जाएगा कहां? भौतिक क्षेत्र में। कैसा चल जाएगा? मैं मेजर हूं, तुमको मानना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, ये चल जाएगा वहां, क्योंकि भौतिक जो भी कार्य हैं वो कषाय से रहित तो होते ही नहीं। संसार क्षेत्र में कषाय है और परमार्थ क्षेत्र में कषाय मुक्तता है। यहां तो बड़े वही माने जाते हैं जिनके पास कषाय नहीं है। जिनके पास कषाय नहीं है उस वही बड़ा बनने की पात्रता रखता है। गुरु आचार्य पद किसको दें? जो चाहता है उसको, जो प्रतीक्षा में है उसको, जो पहले से ही प्रतीक्षा में बैठा है कि मुझे मिलेगा उसको दें। ये बहुत टेढ़ा मार्ग है, ये बहुत मोक्ष मार्ग बहुत टेढ़ा है। यहां पर सब छोड़ना पड़ता है, जो बिल्कुल कुछ नहीं चाहते उनको ढूंढना पड़ता है, और वह भी कहता है, वो भाग जाता है लेने से, जो भाग रहा है मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, उसको पकड़ के लाया जाता है उसको पकड़ के लाया जाता है और जबरदस्ती बिठाया जाता है। नहीं नहीं, आपको तो किसी की भी आशा नहीं है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, चलाने वाला कौन? इसके लिए कोई ना कोई एक नायक होना पड़ता है। भव्य जीव कल्याण करते हैं, निष्पक्ष निष्कषाय होकर के इस मार्ग को चलाना है। निष्पक्ष निष्कषाय वाला ही मोक्ष मार्ग का नायक बन सकता है और हम आपके पास ही योग्यता देख रहे हैं और इसलिए आप बन जाओ। नहीं बनते हैं तो देखो ये सब रुक जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। ऐसा कह कह करके मनवाना पड़ता है बार बार। मनवा मनवाने के बाद भी वो छूट करके भागने में लगे रहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। तुमको ये काम करना पड़ेगा, भविष्यों का कल्याण का ये काम है। और ऐसा कोई भी नहीं करेगा तो ये मार्ग यहीं रुक जाएगा और फिर मार्ग में एक कोई मुख्य नहीं रहेगा तो ये व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो अस्त व्यस्त व्यवस्था के साथ कभी भी धर्म और संघ व्यवस्थित रूप से आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभावना नहीं हो सकती, ऐसा कह करके उनको मनवाया जाता। तो फिर मजबूरी में हाँ ठीक है फिर क्या करना है? करना पड़ता है, कह करके फिर तैयार हो जाते हैं वो। हाँ कल्याण की दृष्टि से नहीं, प्रशस्त को तो शल्य कहा, वहां वो शल्य तो मान कषाय के बगैर नहीं होता। प्रशस्त इसलिए कहा कि ये काम पुण्याश्रव का है, कल्याण का है, पर का कल्याण का है, इसलिए प्रशस्त। परंतु ये कषाय के साथ हो जाए ना तो फिर रत्नत्रय में बाधा आती है। मान कषाय के वशीभूत होकर के पुण्य का काम करेंगे बाधा आती है, और ये पुण्य का ही काम है, शुभोपयोग रूप है। ये शुभोपयोग सिर्फ पुण्याश्रव होता है, पुण्य बंद होता है। तो पुण्य और पुण्य के फल में कामना नहीं करने वाला जीव सम्यक दृष्टि, ऐसा सिद्धांत है। पुण्य में भी कामना नहीं रहता, पुण्य के फल में भी कामना नहीं होती, ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को ख्याल में रखकर साधु को चलना पड़ता है हमेशा। साधु पद पर आए हैं तो फिर मान कषाय को जगने नहीं देते, माया कषाय को जगने नहीं देते, लोभ को जगने नहीं देते, माया को जगने नहीं देते, कंट्रोल में रख करके चलते हैं। मुनि किस गुण स्थान में रहते हैं? छठे सप्तम गुण स्थान में रहते हैं। और वो मुनि महाराज छठे सप्तम गुण स्थान में हैं, तो छठे सप्तम गुण स्थान की यह कषाय दश धर्मों से युक्त है या रहित है? गुणस्थान छठा सप्तम है, यहाँ पर दश धर्म है क्या? नहीं है। तो यह कषाय हमें ये प्रेरणा करेगी क्या, संज्वलन कषाय, कि तुम आचार्य बनो? संज्वलन मान कषाय उदय में आया, आ सकता है, निरंतर उदय में चल रहा है, परंतु ये पदादि की कामना के प्रति लगाव पैदा करेगा क्या? नहीं करेगा। और यदि लगाव पैदा हो जाए तो ये कषाय उदय में रहेगी क्या? क्या अन्य कषाय उदय में आ जाएगी? हाँ मान कषाय, तो ये लगाव पैदा करने वाली जो कषाय है वो उदयागत हो जाएगी। वो कषाय उदयागत हो जाए तो गुणस्थान नीचे आएगा, नीचे आएगा। यदि अनंत अनुबंधी उदय में आने से ये बड़े बनने की कामना हुई है तो पहले में आएगा, और अप्रत्याख्यान के उदय में अगर हो गई है तो चौथे में आएगा, प्रत्याख्यान के उदय में आई है तो पांचम में आएगा। ये गणित जो है ये गणित ऐसे गणित है, इस गणित को छोड़कर हम कुछ भी इधर उधर भाग नहीं सकते। चार प्लस चार इसमें आप गलती से उत्तर कभी भी नहीं लिख सकते और नंबर पूरा ले नहीं सकते गलत करके। 4 + 4 8 ही लिखना पड़ेगा, चाहे आज लिखो चाहे कल लिखो कभी भी लिखो 8 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो उत्तर करेक्ट है। संज्वलन कषाय के उदय में छठा सप्तम गुण स्थान बनता है, बाकी कषाय उस समय उपशमित रहते। इन कषायों को उत्पन्न नहीं होने देना, ये पुरुषार्थ है साधु का। रत्नत्रय वहीं पाया जाता है जहां पर संज्वलन के उदय के अलावा अन्य कषायों का उदय नहीं है, वहां पर साधु पद पाया जाता है। और साधु दिन रात क्या प्रयत्न, किस प्रयत्न में रहते हैं? हाँ, जो कषाय उदय में है वो ये अकेला रहे, बाकी उदय में ना, अनंतानुबंधी उदय में ना आए, अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी कषाय उदय में ना आए, ये इस सावधानी में रहते हैं। और आचार्य परमेष्टि पहले से ही पकड़ लेते हैं शिष्य को, इसकी मन की भावना को देख लेते हैं, मन की भावना में कामना है क्या नहीं। बुला करके पूछते हैं, तुमको आचार्य पद ले लोगे? दे दूं? तो ये भी कहने लग जाए, आप देने के लिए तैयार हैं? हो जाएगा क्या ऐसा? नहीं, वो आचार्य पद को सुनकर के पहले उठ के भाग जाएंगे वहां से। ऐसा पूछने लग जाए, वो पूछते ही समझ जाएंगे वो सच्चे साधु हो तो, जिनका छठा सप्तम गुणस्थान है तो, और नहीं है तो आप दोगे क्या? आप हमको देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे को मत देना। चेंजिंग हो जाएगा, यानी उसको लेने से और बड़ा घाटा है। क्या घाटा है? छठा सप्तम गुणस्थान छूट जाएगा, साधु पद भी चला जाएगा, ये पंच महाव्रत 28 मूल गुण सब निरस हो गए, ऊपर ऊपर रह गए, और शल्य प्रशस्त शल्य आ गए। ये शल्य हानिकारक है, रत्नत्रय को मिटा देता है। आचरण रहेगा ऊपर से, देखो अपन दिगंबर ही रहेंगे, ये कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एक ही बार हार लेंगे या दो बार लेंगे क्या? नहीं। सभी क्रियाएं यथावत, 28 मूल गुण यथावत रहेंगे, जो द्रव्य रूप हैं, बाह्य रूप हैं। अभ्यंतर 28 मूल गुण अलग हैं, बाह्य 28 मूल गुण अलग हैं। अभ्यंतर 28 मूल गुणों को भाव मूल गुण कहा और बाह्य 28 मूल गुणों को द्रव्य मूल गुण कहा, तो द्रव्य बचेगा, भाव नहीं बचेगा। नारियल की परटी बच जाएगी, खोबरा नहीं रहेगा, जल भी नहीं रहेगा उसमें, तो परटी की क्या कीमत? वो तो फ्री में देते हैं, फेंक देते हैं, कहीं भी गटर में फेंक देते हैं, पानी गर्म करने के काम में आएगा वो। तो ऐसे 28 मूल गुण भी किसी काम के नहीं, जो भाव महा 28 मूल गुणों से रहित हैं, ऐसे 28 मूल गुण किसी काम के नहीं। यहां बहुत संभालना पड़ता है, देखो द्रव्य में जरा दोष आ जाए चल जाएगा यहां, किंतु भाव में जरा भी कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाव से ही गाड़ी चलती है। पर्टी फूट जाता है और निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन गोला तो बच जाए, कीमत किसकी है? गोले की है। गोला तो उतने ही मूल्य में बिकेगा, पर्टी के बिना रहने वाला गोला, पर पर्टी के बिना भी गोला नहीं होता है, ये भी सिद्धांत है। वो जन्म लेते समय ही गोला जन्म लेते समय पर्टी के साथ ही जन्मा है। द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता, यानी पहला द्रव्य लिंग प्रकट होता ऐसा भी नहीं, दोनों एक साथ अंकुरित होते। कब अंकुरित होते हैं, कैसे अंकुरित होते हैं, तो देखो गुरु जब दीक्षा देते हैं किसी शिष्य को तो शिष्य की भावना तीन कषायों से मुक्त होने की होती है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरणी, तीन कषायों से मुक्त होने की होती है। ये भाव दीक्षा है, कषाय मुक्त होना ये भाव दीक्षा है। ये भाव 28 मूल गुण है, इन तीन कषायों के न होने से ही 28 पल सकते हैं भाव के मूल गुण। और ये द्रव्य के बिना प्रकट नहीं होते, क्योंकि वस्त्रादि परिग्रह का त्याग गुरु के सामने समक्ष होता है, और इधर वस्त्र उतारा और इधर भाव और द्रव्य दोनों प्रकट होते हैं, बाह्य दिगंबर अवस्था और अभ्यंतर दिगंबर अवस्था। अभ्यंतर दिगंबर अवस्था तीन कषायों के अभाव से है और एक कषाय के उदय से है, संज्वलन, और द्रव्य संपूर्ण 10 परिग्रहों को त्यागने से है। ये द्रव्य 28 मूल गुण है, 10 परिग्रहों को त्यागे बिना क्या 28 मूल गुणों को पालन करना संभव है, 5 महाव्रतों को पालन करना संभव है? सभी महाव्रतों का, जो को महाव्रत तो 5 होते हैं, सभी महाव्रतों का मूल आधार स्तंभ कौन सा महाव्रत है, मूल आधार स्तंभ अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी अपरिग्रह, भीतरी परिग्रह से भी रहित, बहिरंग परिग्रह से भी रहित। ये अपरिग्रह महाव्रत एक आ जाए तो 28 पूरे के पूरे उसके पीछे समीचीन रूप से आ जाएंगे, समीचीन रहेंगे, यथार्थ रहेंगे। तो बात चल रही थी वहां तीर्थंकर की, तीर्थंकर किसी से दीक्षा नहीं लेते, स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू होते हैं। वो किसी मुनि महाराज को भी नमस्कार नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं को नमन करने के उनके भाव नहीं रहते। जो भी शरीरधारी जीव हैं उनको नमस्कार वो नहीं करते, जो मंजिल पर पहुंच गई हैं आत्माएं वो परिशुद्ध कहलाती हैं, वो शुद्ध आत्माएं, उन्हीं की वंदना वे करते। तो सांपों को जब मंत्र सुनाया तो कौन सा मंत्र सुनाया, नमः सिद्धेभ्यः सुनाया, और वे दोनों जीव कहां जाकर के जन्म लिए, देव गति में गए। कौन से देव बन गए, चार प्रकार के देव हैं क्या, नहीं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और कल्पवासी। कल्पवासी यानी स्वर्ग में रहने वाले देव, ज्योतिष के यानी चंद्र सूर्य नग्रह नक्षत्र ऊपर रहने वाले, इसमें गए, इसमें गए क्या, भवनवासी व्यंतर में गए, भवनवासी और व्यंतर में गए। तो भवनवासी व्यंतर में जाने वाले वे दोनों प्राणी जीव सम्यक दृष्टि थे क्या, सम्यक तो से रहित थे, तीर्थंकर भगवान नमोकार मंत्र सुना रहे हैं और सम्यक तो रहित थे, सम्यक दृष्टि थे इसलिए देवगति गए। हम्म, आप भी जीव सिद्धांत चर्चा पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, ये मतभेद क्यों आ रहा है दोनों में? तीर्थंकर भगवान जिनको मंत्र सुना रहे हैं वो सम्यक दृष्टि थी क्या? सम्यक तो रहित थे। सुनाने के बाद सम्यक दृष्टि बन गए, ठीक है। सम्यक दृष्टि बनने के बाद, सम्यक दृष्टि बनने के बाद देव गति में ही जाते हैं, ये सत्य है। पर सम्यक दृष्टि बने थे या नहीं बने थे? नहीं बने थे। नमोकार मंत्र सुनने के बाद भी नहीं बने थे और पहले भी सम्यक दृष्टि नहीं थे, यही लिखा है शास्त्र में। क्या लिखा है देखो, यहां से वो सांप क्या, हम लोग भी यदि भवनत देवगति को बांध कर, देखो देवगति का बंध तो मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है, सम्यक्त्व के साथ भी हो सकता है, परंतु सम्यक्तवान जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के नियम से देवगति का ही बंध होता है, ऐसा नियम है। परंतु मिथ्यात्वी हो तो देवगति का भी बंद कर सकता है और अन्य गतियों का भी बंद कर सकता है, ऐसा है। परंतु जिनको भवनत्रिक में जाना है वे सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाते, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये तीर्थंकरों का उपदेश है। कहां जाने वाले, कहां कहां जाने वालों के पास सम्यक दर्शन नहीं होता? भवनत्रिक में, यानी कहां कहां? भवनत्रिक तीन में, भवनवासी में, व्यंतरवासी में और ज्योतिषी में जाने वाले जीवों को सम्यक दर्शन नियम से नहीं रहता, और जिसको सम्यक दर्शन है वो तीन में जाता ही नहीं, वो वैमानिकों में जाता है। सम्यक दृष्टि जीव वैमानिकों में ही जन्म लेता है, ही लगा हुआ वहां। सम्यक एकांत, सम्यक एकांत, सम्यक दृष्टि जीव वैमानिकों में ही जन्म लेते, परंतु मिथ्या दृष्टि जो रहेंगे वे जीव चाहे त्रिरिंच हो चाहे मनुष्य हो कोई भी हो, यदि मिथ्यात्व के साथ रहेंगे तो वैमानिक में भी जा सकते हैं और भवनत्रिक में भी जा सकते हैं, भवनत्रिक में भी जा सकते हैं, ठीक है ना ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत पता लगाना चाहिए ताकि हाँ हाँ वहां जाने के बाद पा सकते हैं। समूह शरण में उपदेश सुनने के लिए भगवान के पास आते हैं तो वहां के मानस स्तंभ को देखकर सम्यक दर्शन हो सकता है, वहां के पंच कल्याण की महिमा को, क्या बोलते उसको, जिन जिन महिमा दर्शन, जिन पूजन में भाग लेकर के उसको देखकर के सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो भवनत्रिक में रहने वाले जीवों को अपने भवनों में रहते हुए भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, वहां जो उनके भवनों में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा होती है ना, उनका दर्शन करते करते भी सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन के वहां बहुत सारे निमित्त, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, परंतु वे सम्यक दर्शन प्राप्त जाने के बाद कर लिया हो भी गया तो क्या हुआ? हा? उसके बाद कैसे वैमानिक होगा? एक पर्याय ने कहीं भवनवासी में गया, व्यंतर में जन्म हो गया, और क्या वैमानिकों में जाएगा? देव मरण कर वैमानिक नहीं बनता, देव मरण करके देवगति में जन्म ले सकता नहीं। इंद्री इंद्री सौज्ञ, इंद्र सौज्ञ, हाँ इंद्रपद, हाँ वहां पर भी इंद्रपद है। व्यंतरेन्द्र, भवनेन्द्र, वो जितने भेद है ना उन सभी में एक एक इंद्र है। असुरेन्द्र, असुर कुमार की जातियों में जो इंद्र है वो असुरेन्द्र, उनकी मुखिया वहां है। परंतु ये सभी देव, चाहे इंद्र हो कोई भी हो, वो स्वर्ग का जो इंद्र है उनकी आज्ञा में ये रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र का आदेश सब जगह चल सकता है, सभी जगह सौधर्मेंद्र का, क्योंकि पंच कल्याणक में कौन इंद्र आते हैं? सौधर्मेंद्र, मुखिया तो वही है। और समोचरण की रचना के लिए आदेश देता है सौधर्मेंद्र, तो किसको देता है? कुबेर को देता है। देखो समोचरण की रचना से लेकर सभी काम सौधर्मेंद्र से ही संपन्न होते हैं। हम ये बता रहे हैं कि भवनत्रिक में रहने वाले भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी देव सम्यक दृष्टि बन गए तो क्या मुनि महाराज के समान पूजनीय बन गए? अरहंत भगवान के समान क्या पूजनीय बन गए? असंयम रहता है ना। जैन धर्म में पूजनीय अवस्था कौन सी अवस्था है? संयम की या असंयम की? संयम की अवस्था पूजनीय है। संयम कहाँ होता है? दिगंबर, दिगंबरत्व में संयम होता है। क्या वस्त्रधारी होने पर भी संयम होता है? ये जैन धर्म का मर्म है। अपन को ज्ञान ही नहीं था ना अभी तक, इसलिए लगता था कि सभी वंदनीय। सभी वंदनी, तो सभी वंदनी कैसे? राग दशा भी वंदनी, असयम दशा भी वंदनी और वीतराग दशा भी वंदनी, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों वंदनी हो जाएंगे तो जिसकी हम वंदना करते हैं उनको मोक्ष आदि की सिद्धि होती है? होती है कि नहीं? मोक्ष होना ही चाहिए, जिसको मोक्ष होना संभव है उनकी वंदना करते हैं हम। जिस पद से मोक्ष मिलता है वह पद वंदनीय है। तो देवगति में रहने वाले ये चारों प्रकार के देव, चाहे वो वैमानिक रहें या व्यंतर रहें, भवनवासी रहें, ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो कई लोग पूछते हैं फिर उनका नाम देव कैसे क्यों रखा है? देव रखने से क्या हो गया? यहाँ पर कोई किसी का नाम महावीर रख दिया तो तुम नमस्कार करोगे क्या? महावीर भगवान जैसे उनके समोचरण में जाओगे क्या? देव तो देव है, ये भी एक नाम मात्र है। देव कहने से दो प्रकार के देव हैं, वंदनीय देव, अवंदनीय देव। वंदना करना तो एक सामान्य बात होती है, वंदना करना तो एक सामान्य बात, पूजा करना तो एक विशेष बात और होती है। जो वंदनी ही नहीं होते वे पूजनी हो ही नहीं सकते, ये गणित है, ये सिद्धांत है। जो वंदनी ही नहीं रह सकते वो पूजनी भी नहीं रह सकते, और जो पूजनी होते हैं वे वंदनी तो होते ही हैं, या जो वंदनी होते हैं वो तो पूजनीय होते ही हैं। परंतु वंदनीयता और पूज्यता किससे आती है ये हमें पता रहना चाहिए, तो फिर हम ज्ञानी कहला सकते। तब तक तो अज्ञानता में रहेंगे। तो दो चीजें हैं, संयम असंयम। असंयम जिसके पास है वो भी वंदनी, वो वंदनी नहीं है, और संयम जिसके पास है वे ही वंदनी। असंयमी अवंदनी ही होते हैं, यहां ही लगाओ, सम्यक एकांत है। पढ़कर क्या है ना, अनेकांत क्या होता है, सम्यक एकांत क्या होता है, मिथ्या एकांत क्या होता है, ये पढ़कर क्या आए है ना। देखो संयमी ही वंदनीय होते हैं, गलत है क्या ये वाक्य? हाँ, संयमी ही वंदनीय होते हैं, गलत है क्या? असंयमी वंदनीय होते ही नहीं, ये गलत है क्या? हाँ बोलो बोलो, चर्चा करो। हाँ? होते ही नहीं, ये सही है क्या गलत है? सही है। किस धर्म के अनुसार? आपके धर्म के अनुसार। आपका धर्म कौन सा? जैन धर्म। तो यदि जैन धर्म के अनुसार आपको विचार करना है तो ऐसा ही निर्णय होगा ये। नहीं नहीं, वंदना का मतलब देखो, जय जिनेन्द्र, हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना। हाँ, जय जिनेन्द्र ये करने के लिए वंदना नहीं, वंदना का मतलब नमोस्तु बोलेंगे क्या? भगवान को क्या बोलते हैं? नमोस्तु बोलते हैं। और आरिकाओं को क्या बोलते हैं? हाँ ये तो पता रहना चाहिए, बेसिक है, वेरी बेसिक नॉलेज है। आरिका को क्या बोलते हैं? वंदामी या इच्छामी। पूर्व काल में इच्छामी बोला जाता था, वर्तमान काल में वंदामी शब्द का उपयोग किया जाने लगा, किंतु उसका अर्थ भी ये नहीं है कि हम आरिका को नमोस्तु बोल रहे हैं। वंदामी का अर्थ नमोस्तु नहीं है, इच्छाकार है, इच्छामी है। प्राचीन ग्रंथ सुनो, वही समझा रहे हैं, सुन लो वही आ रहे हैं, समझा रहे हैं। आरिका को क्या कहते हैं अपन? वंदामी। और कोई मित्र वगैरह हो? जय जिनेन्द्र। जो वस्त्रधारी हो लोग, मनुष्य? जय जिनेन्द्र। वस्त्रधारी जीव सभी इच्छामी और जय जिनेन्द्र, ये दो के लायक थे। अब ये सब करते समय आप एक विनय भी करते हैं। उस विनय के संबंध में समझो क्या है, चरण छूकर नमस्कार करते माता पिता का, गलत है क्या? गलत नहीं है, सही है। हाँ सुनो, चरण छूकर करना चाहिए कि नहीं? क्या ऐसा करोगे, जय जिनेन्द्र माता पिता जी, जय जिनेन्द्र, ऐसा तो नहीं? विनय से करना पड़ेगा, माता पिता को जय जिनेन्द्र ही कहना चाहिए। और चरण छूकर नमोस्तु माता पिता जी कहोगे क्या? तो जैन धर्म में तो ये नहीं कहा है, नमस्कार भी शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि नमोकार मंत्र में नमस्कार शब्द ही है, नमो नमः एक ही बात है। नमः का मतलब क्या है? मैं नमस्कार करता हूं। माता पिता हो, वस्त्रधारी हो, कोई भी जीव संसारी, वस्त्रधारी परिग्रहधारी, उसके लिए नमस्कार शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा शब्द का उपयोग करना चाहिए? जय जिनेन्द्र। अब विनय करते समय तुम चाहे चरण छू लो, चाहे कैसा भी करो। विनय कर, देखो माता पिता हो, बड़े भाई हो, बड़ों को कैसे नमन किया जाता है? नमन का मतलब विनय है, अभिवादन। अभिवादन कैसे किया जाता है? तो चरण छूना ये सब जगह है, माता पिता का भी चरण छू करके जय जिनेन्द्र बोलते, ये विशिष्ट विनय हुआ। पर हर समय में होता है ऐसा भी नहीं, विशेष परिस्थितियों में होता है, विशेष संदर्भों में होता है। एक विद्यार्थी पास हो गया, माता पिताओं ने उसको पढ़ाया, रिजल्ट आया, रैंक में आया था। जहां खुशी में माता पिता से मिलेगा ना, तो उस समय क्या कहेगा, चरण छूकर, विशेष संदर्भ चरण छूकर जय जिनेन्द्र कहेगा, मैं पास हो गया, रैंक में पास हो गया कहेगा। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है, माता पिता की चरण छुए? जिसका चरण छूना चाहिए उसका तो नहीं छुया, और जिसका नहीं छूना चाहिए उसका छूते, बार बार छू लेते किसका नहीं छूना चाहिए उसका बार बार छूते, किसका नहीं छूना चाहिए, संयमियों के चरण छूकर नमस्कार नहीं कर, स्त्रियों के लिए बताया है, पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए बताया है कि स्त्री संयमी के चरण छूकर नमस्कार न करे, क्योंकि उन्होंने संयम धारण किया है। इसलिए चरण छूकर नहीं, ये संविधान है, महावीर भगवान का उपदेश है, और ये पालन करना पड़ेगा तो ही हम जैनी, नहीं तो महावीर भगवान कुछ कह रहे हैं और हम कुछ अपने मन से कर रहे हैं तो हम जैन कहां? किसका चरण नहीं छूना, सही, लेकिन बार बार छूने के छूने का भाव होता है नहीं होता है, नहीं होता है तो संयम है नहीं होता है तो फिर आगम मालूम है, यथार्थ श्रद्धा है, जहां कहां पर क्या करना ये मालूम है, इसलिए भाव नहीं होते। लेकिन बड़ों के चरण छूना चाहिए, ये विशिष्ट विनय है। साधुओं के चरण छूकर क्या शब्द का उच्चारण करोगे अभिवादन के रूप में, नमोस्तु बोलेंगे। भगवान के चरण स्पर्श करके क्या बोलोगे, नमोस्तु बोलेंगे। चरण छूने के लिए साक्षात होना चाहिए, जिसको हम जय जिनेन्द्र बोलते हैं या नमोस्तु बोलते हैं, साक्षात आने पर चरण छूने आदि का व्यवहार होता है। क्या साधु आदि का प्रतिमा रखकर चरण छूओगे, फोटो रखकर? नहीं, साक्षात होना चाहिए क्या? नहीं, भगवान की साक्षात भगवान के चरण नहीं छू सकते, ये ठीक है, छू ही नहीं सकते, मतलब आप छूने के लिए जाएंगे प्रयत्न भी नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आभा मंडल में कोई प्रवेश, कोई वस्तु प्रवेश नहीं होती, उनके प्रभाव मंडल के अंदर कोई वस्तु ही प्रवेश नहीं होता है तो कैसे चरण छुएंगे। साधु के चरण छू सकते, क्योंकि साधु के लिए अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान के पश्चात केवली के चरण छूना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, छू सकते, प्रतिमा है, वो प्रतिमा है, साक्षात का छूना असंभव है, हम चाहते हैं साक्षात का भी छू लें, लेकिन छू नहीं सकते, प्रयत्न करने पर भी नहीं हो सकता है वो, परंतु ये तो प्रतिमा है, भावना हमारी साकार होती है प्रतिमा से, प्रतिमा से साकार हो जाएगी छूने की भावना, किंतु साक्षात की छूने की भावना रखते हैं और जाकर के प्रयत्न भी करते हैं तो छू नहीं सकते, भावना साकार नहीं होगी। तो ये समझ में आया ना, ये देवगति की चर्चा चल रही है, देव सभी असंयमी रहते हैं क्या संयमी, ये पता हो पहले, असंयमी रहते हैं, पहली बात ये पता रहना चाहिए सिद्धांत। और जैन धर्म में नमोस्तु किसको कहा है, संयमियों को, जय जिनेन्द्र किसको कहा है, असंयमियों को, वंदामी किसको कहा है? हाँ, जिन्होंने एक देश पापों को त्यागा है और देशव्रति बने हैं, उनके लिए, प्रतिमाधारियों के लिए वंदना, आरिकाओं के लिए वंदामी और छुल्लक छुल्लिका के लिए इच्छा में इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में है और वो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आरिका को भी इच्छा में ही कहने की पद्धति प्राचीन काल में थी। इस काल में वंदामी कहने की पद्धति आ गई। क्यों आ गई? इसके पीछे कारण है, छुल्लिका को भी इच्छा में और आरिका को भी इच्छा में कहा। इनके दोनों के पदों में कुछ भेद भिन्नता है कि नहीं है? छुल्लिका तो प्रतिमाधारी है, 11 प्रतिमा को पालन करने वाली छुल्लिका है। आरिका प्रतिमा पालन करती है क्या? प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं होती है ना श्रावक की, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ये व्रत हैं उनके। इन व्रतों को, प्रतिमा रूप व्रतों को साधना करने वाली छुल्लिका और साधन करने वाले छुल्लक होते हैं, और ऐलक भी 11 प्रतिमाधारी ही होते हैं। ये मालूम है कि नहीं आपको? ये तो बेसिक है, ये तो मालूम रहना ही चाहिए, नहीं तो इसके आगे कैसे चलेगा? प्रतिमाधारी को इच्छा में, हाँ, प्रतिमाधारी को इच्छा में, किसको इच्छा में? जिसने घर का त्याग दिया, घर का त्याग किया है तो 11 प्रतिमा अवश्य स्वीकार किया है। घर का त्याग किस प्रतिमा में होता है? घर का त्याग किस प्रतिमा में होता है? 11वीं प्रतिमा में। 10वीं प्रतिमा तक घर में रहकर उन 10 प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं। 11वीं प्रतिमा ले लेंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? संघ में रहना पड़ेगा। छुल्लिका हो तो आरिका संघ में रहना पड़ेगा, और छुल्लक हो तो मुनियों के साथ रहना पड़ेगा। ये होता है, ग्रह तो मुनिव नमित्वा गुरुपकंठे व्रतानि परिग्रह्य। 11 प्रतिमाओं को गुरु के पास लेकर के गुरु के साथ रहकर व्रत पालन करने लगता है। ये क्यों वहां पर रहता है? खुद भी मुनि बनने के लायक अभ्यास करता रहता है। ये प्रतिमाएं सभी मुनि बनने के अभ्यास के व्रत माने जाते हैं, अभ्यास के व्रत। अभ्यास के हैं इसलिए ये वंदनी नहीं है, यानी नमोस्तु के लायक नहीं है, इच्छामी के लायक रह गए। इच्छामी का क्या अर्थ? हाथ भी जोड़ रहे हैं, मान के चले छुल्लक जी के चरण भी छू लिया तो कोई गलत नहीं, परंतु इच्छामी बोल रहे हैं, इच्छामी बोल रहे हैं, तो क्या अर्थ इच्छामी का? आप जैसे, यानी मैं भी प्रतिमाधारी बनना चाहता हूं, हा? नहीं नहीं, ये तो कह रहा हूं ना, छुल्लक जी को आपने इच्छामी किया तो आप क्या प्रतिमाधारी बनना चाहते हैं? बनने का तो मुनि ही है, लेकिन अभी तो आपके समान 11 प्रतिमाधारी बनना चाहते हैं, यही अर्थ है ना? तो क्या है? आपके इच्छा में, इच्छा में यानी इच्छा करता हूं, ऐसा अर्थ है उस शब्द का अर्थ। सुनो, इच्छा में यानी क्या? मैं भी इच्छा करता हूं, इतना ही अर्थ है। परंतु किसकी इच्छा करता हूं उसमें क्या समझना चाहिए? आपकी 11 प्रतिमाओं, आप जैसे 11 प्रतिमा पालन कर रहे हैं वैसे हम भी पालन करने की इच्छा रखते हैं या इच्छा करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ये ठीक है। आप जैसे साधु बनने की इच्छा कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, साधु पद का अभ्यास कर रहे हैं, वैसे ही मेरी भी इच्छा है, यानी मैं भी संयमी बनने की ही इच्छा रखता हूँ, संयमी बनने की इच्छा रखता हूँ, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि मैं भी 11 प्रतिमा लेने की इच्छा रखता हूँ, ऐसा नहीं। मैं आप जैसे संयम की इच्छा रखते हुए क्षुल्लक पद की साधना कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी संयम की ही इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैं करने में आप जैसा भी नहीं कर रहा हूँ। आप तो 11 प्रतिमाधारी हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन मेरी भावना भी संयम में है। अब मैं यदि क्षुल्लक बनकर के साधना करता हूँ तो भी इच्छुक हूँ, संयम की इच्छुक हूँ, और क्षुल्लक नहीं भी बना हूँ तो भी मैं संयम की ही इच्छुक हूँ। किंतु मैं देश व्रत का इच्छुक नहीं हूँ, देश व्रत का इच्छुक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं महाव्रत ले सकता हूँ, महाव्रत ही मेरे ध्येय में है, और यदि मेरी पात्रता महाव्रत लेने के लिए नहीं है, मेरी पात्रता में कोई कमी है, तब मैं देशव्रती बनकर संयम की इच्छा रखता हूँ। ऐसा इच्छामी पद का अर्थ है। तो ये इच्छामी पद, देखो आगम में जय जिनेन्द्र शब्द भी नहीं है, वंदना शब्द भी नहीं है, वंदामी शब्द भी नहीं है प्राचीन आगम में, ये सब आजकल उसको व्यवस्थित बना दिया गया है, अवस्था के अनुरूप व्यवस्था हो गई है। तो ये गलत है क्या? गलत भी नहीं है। वंदना कहना गलत है क्या? गलत भी नहीं है। वंदामी कहना गलत है क्या? गलत भी नहीं है। क्यों? इच्छामी के अर्थ में ही इन शब्द सभी शब्दों को प्रयोग किया गया है। अष्टपाहुड़ में कुंद स्वामी ने लिखा है, क्या जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो को धारण करने वाले हैं और वस्त्रावरण से सहित हैं, वस्त्र के आवरण से सहित हैं, ऐसे जीव सभी किसके योग्य हैं? तो इच्छाकार के योग्य हैं, इच्छाकार के योग्य हैं, वंदामी के योग्य हैं, वंदना के योग्य हैं, जय जिनेन्द्र के योग्य हैं, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। इच्छाकार के योग्य हैं, सभी इच्छाकार के योग्य हैं, और हैं इच्छाकार के ही योग्य हैं सभी को, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिसके पास है वो सभी वस्त्रधारी तो हैं। चारित्र नहीं है इसलिए तो वस्त्रधारी है, और चारित्र आ गया तो वस्त्रधारी रह ही नहीं सकते। तो कोई भी हो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो रत्नों को धारण करने वाला, पालन करने वाला जीव, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे तिरंच हो, चाहे मनुष्य हो, ये दो रत्न तो रहते ही हैं। परंतु यहाँ मनुष्यों की अपेक्षा से मनुष्यों को क्या करना चाहिए, ये कथन है। मनुष्य इच्छाकार करें परस्पर में, मनुष्य परस्पर में इच्छाकार बोलें। इच्छाकार का अर्थ जैसे दो श्रावक मिल गए, दोनों सम्यक दृष्टि हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इच्छाकार। मान के चले कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, उनसे क्या कहोगे? उनके लिए भी वही है, इच्छाकार ही है, क्योंकि वह भी दोष छोड़कर संयम की इच्छा रखता है, और यह भी दोषों को त्याग कर संयम की ही इच्छा रखता है। मान के चले ये एक सम्यत्वहीन व्यक्ति आए, उनके लिए क्या कहोगे? जय जिनेन्द्र तो अधिक आजकल का है, पहला क्या था? इच्छाकार। तो इच्छाकार कहो या जय जिनेन्द्र कहो, बात तो एक ही है। अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। इच्छाकार कहा, किसको कहा आपने, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है और वस्त्रधारी है, तो असंयमी है। असंयमी को क्या बोलना, इच्छाकार। इच्छाकार का मतलब मैं संयमी बनना चाहता हूं, ये अर्थ हो गया। और वो क्या बोलेगा आपको, इच्छाकार ही बोलेगा, तो उसका क्या अर्थ है, उनका बोलने का क्या अर्थ है, वही अर्थ है, मैं भी संयमी बोलना बनना चाहता हूं। एक सम्यक तो हीन जीव भी हो तो वो भी संयम की ही अपेक्षा रखता है ना, क्या प्रथम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक नहीं जा सकता, डायरेक्ट जा सकता है, तो वही बोलेगा वो भी, मैं भी संयम की ही इच्छा रखता हूं। और ये अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, मैं भी संयम की इच्छा रखता हूं। तो देखो जैन धर्म में क्या कहा है, संयमी यानी मुनि, मैं भी मुनि बनना चाहता हूं, ये कह रहे हैं आपस में। अभिवादन में क्या बोला जा रहा है, इच्छाकार का मतलब क्या है, मैं भी मुनि बनना चाहता हूं, संयमी बनना चाहता हूं, मुनि बनना चाहता हूं, एक ही बात है, एक ही बात है वो। हाँ ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक। और जो मुनि ही नहीं बनना चाहता है वो क्या कहे, वो चुपचाप रहेगा क्या, वो बनना ही नहीं चाहता, हमको बनना ही नहीं है। जो बनना भी नहीं चाहता उनको कभी न कभी बनना ही पड़ेगा ना, चतुर्गति से मुक्त होने का रास्ता तो मुनि पद ही है, संसार से पार होने का पद तो मुनि पद ही है। आप इस भव में इस जन्म में नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है नहीं बनना चाहते, लेकिन सामने वाला आपको इच्छा में कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुपचाप रहोगे, क्या बोलोगे, बोलो ना, इच्छाकारी बोलोगे ना। तो इस जन्म में बनो या अगले जन्म में बनो, अनंत काल के बाद भी बनो, मुनि बने बिना आपको मोक्ष है क्या, नहीं है, तो इच्छाकार ही बोलना। उसका अर्थ मैं अनंत काल बाद बनूंगा भी है उसका अर्थ आज बनूंगा भी है जब तक हम बनेंगे नहीं तब तक इच्छाकार ही बोलने का विधान है। क्या करना, हाँ नहीं नहीं ये अभिवादन आदर है, ये क्या है, आप किस प्रकार की विचारधारा को रखते हैं, तो हम अच्छे विचारधारा रखते हैं, किस प्रकार के धार्मिक हैं, कैसे हैं, शुभ हैं, कैसे हैं, हम भी ऐसे महान संयम पद को धारण करने की इच्छा रखते हैं, कहने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं, हमारे भाव शुभ हैं आपके प्रति, आप जैसे चाहते हैं वैसे हम भी चाहते हैं, ये है अभिवादन, अभिवादन है। और ये कुछ भी व्यवहार न होता तो आपस में विनय कैसे करेंगे, किस भावना के साथ विनय करेंगे, किस भावना के साथ सामने वाले व्यक्ति का आदर करेंगे, तो धार्मिक भावना को लेकर के आदर करने का नाम ये अभिवादन कहलाता है, अभिवादन व्यवहार। विनयशील के साथ बोलते समय क्या बोलेंगे, विनय क्या हुआ, हाथ जोड़ दिया ये विनय हो गया, चरण भी छू लिया विनय हो गया, कुछ बोलो तो बोलते समय क्या बोलेंगे, ये व्यवहार रखा है। बोलते समय आपके भाव अभिव्यक्त होते हैं और उसके साथ धार्मिक भावना से आप जुड़े हुए होना चाहिए, इच्छामि यानी मैं संयम चाहता हूं, ये धार्मिक भावना है, हो गई, वो गलत है उसको। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, अर्थ तो वही है लेकिन उस अर्थ को कौन समझता नमस्कार में भी इच्छाकार शब्द का अर्थ छिपा हुआ है, ये निसर्ग की देन है, इच्छाकार ही बोलना चाहिए। कन्वर्ट इसलिए किया कि स्थान मान पता चल जाए, क्षुल्लक ग्यारहवीं प्रतिमाधारी हैं और आर्य का उपचार महाव्रत धारिणी है, उपचार महाव्रत धारिणी है, ये अंतर एक दूसरे को पता चले इसलिए। और फिर अन्य प्रतिमाधारी दसवीं प्रतिमा तक, पहली प्रतिमा से लेकर दसवीं प्रतिमा तक की वंदना बोलते हैं, तो आरिका को क्या बोलेंगे, वो वंदना ही बोलेंगे, और आरिका इनको क्या बोलेगी फिर, ये तो समस्या आ गई बहुत बड़ी। इच्छाकार नहीं बोलेगी क्या, नहीं बोलेगी, तो उच्चाकार बोलने से क्या नमस्त हो जाएगा उनको, नहीं बोलने को कहा है क्या, नहीं नहीं कहा है, तो क्या बोलेंगे बोलो, आरिका क्या करेगी फिर उनके प्रति, आरिका प्रतिमा दस प्रतिमाधारी आठ प्रतिमाधारी है, उनके प्रति क्या करेगी, आशीर्वाद देगी, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी हो गई, वो तो आशीर्वाद देगी। बड़ी है, देखो बड़े छोटे को आशीर्वाद भी देते हैं तो गलत नहीं है, आशीर्वाद का अर्थ ये भी नहीं है कि हम महाव्रती हैं, आशीर्वाद का अर्थ होता है आप भी साधना में सफल हो जाओ, ये अभिवादन है, ये आपके लिए अभिनंदन है, आशीर्वाद का मतलब आप जिस उद्देश्य से नमस्कार कर रहे हैं उस साधना में सफल बनो, वो भी तो इच्छाकार ही, तो आशीर्वाद भी इच्छाकार ही है, पर ये है कि छोटा जब बड़े को इच्छा कर कहता है और पद में औरतों में बड़े हैं तो वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो भी वो इच्छाकार ही है, किंतु मुनि महाराज को आपने नमस्कार किया और मुनि महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया तो उनके आशीर्वाद का क्या अर्थ है, हाँ सद्धर्म वृद्धि रस्त, आरिका भी नमस्कार करती है तो मुनि महाराज क्या बोलते हैं, आशीर्वाद तो देना तो एक आप सफल हो, आपका कल्याण हो, ये हो गया, पर अर्थ क्या है, हाँ आप जिस धर्म को स्वीकार किए हैं अभ्यास कर रहे हैं उसमें विकास हो और आपके लिए महान संयम की उपलब्धि हो और आत्मा का कल्याण हो, अच्छी तरह से समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, संलेखना मरण हो, संलेखना मरण की प्राप्ति हो, ये आशीर्वाद का अर्थ है, संलेखना में ही आत्मा का कल्याण है, संलेखना में ही आत्मा का कल्याण है, हाँ सद्धर्म वृद्धि रस्तु का मतलब ये धर्म कहलाता है, चारित्र और संलेखना व्रत ये दोनों ही धर्म हैं, मरण भी आशीर्वाद नहीं कहते, आशीर्वाद का मतलब ये संकेत हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने के बाद फिर क्या कहते हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तो सद्धर्म वृद्धि का मतलब क्या रहा, हाँ आप जिस धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं उसमें उन भावों में वृद्धि हो और आपके पास भी धर्म वो आ जाए, ऐसा भी बोलते हैं समाधि वृद्धि रस्तु, हाँ आप यदि प्रतिमाधारी हैं, आरिका हैं, उपचार महाव्रतधारिणी हैं, तो समाधि वृद्धि रस्तु ये कहना भी गलत नहीं है, यानी आप तो व्रत का पालन कर ही रहे हैं तो यदि उसी में मरण होता है तो समाधि मरण हो, समाधि मरण से च्युत ना हो, अच्छी तरह से मरण हो, ये और मुनि मुनि के प्रति क्या कहते हैं, दोनों नमोस्तु बोलते हैं। यहां पर कोई भावनाएं नहीं है कि मैं वो बनना चाहता हूं, ये बनना चाहता हूं, मैं सिद्ध बनना चाहता हूं या अरहंत बनना चाहता हूं, ऐसी कोई ऊपर की पदों की अपेक्षा रख करके अभिवादन नहीं होता। गुणों की वंदना होती है परस्पर में। एक मुनि दूसरे मुनि के लिए नमस्तु कर रहे हैं तो रत्नत्रय गुण की वंदना कर रहे हैं, अरहंत भगवान की भी वंदना कर रहे हैं तो रत्नत्रय गुण की ही वंदना हो रही है, सिद्धों की वंदना कर रहे हैं तो आठ मूल गुणों की वंदना हो रही है। तो पूजनीय पद आराध्य पद तो पंच परमिष्टि पद ही आराध्य पद है, ये मूलभूत विषय सबको समझना आना चाहिए। संयम पद होते हैं चार और संयम मार्गना से भी मुक्त होते हैं सिद्ध भगवान, वे तो आठ गुणों की अपेक्षा से वंदनीय है, बाकी सब रत्नत्रय की अपेक्षा से वंदनीय है। अरहंत के पास भी रत्नत्रय है और शेष परमिष्टियों के पास भी रत्नत्रय है। जैन धर्म में नमोस्तु ऐसा जो कहा जाता है वो गुणों के लिए, कौन से गुण? रत्नत्रय गुण। और जहां रत्नत्रय होता है वो तो संयम होता ही है, परंतु जहां परिग्रह है, वस्त्र है, वहां रत्नत्रय होता ही नहीं है। वहां पर केवल आप ये कह सकते हैं इच्छाकार जय जिनेन्द्र, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूजा नहीं, अक्षत चढ़ाने का व्यवहार भी नहीं, आरती भी नहीं, ये जैन धर्म में बिल्कुल उपदेश नहीं है तीर्थंकरों का। इतना करना चाहिए, इतना करेंगे तो हमारा व्यवहार जो है सम्यक दर्शन के अनुरूप होगा, अन्यथा अर्घ्य चढ़ाना या अक्षत चढ़ाना जहां कहीं भी, उसका क्या तात्पर्य? अर्घ्य चावल किसका प्रतीक है? वो अक्षय पद प्राप्त है। अक्षत हम मंदिर के लिए क्यों ले जाते हैं? अनर्घ्य पद की प्राप्ति, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। अक्षय पद क्या है? मोक्ष पद है। तो मोक्ष पद संयमी को नमस्कार करने से मिलने वाला है कि असंयमी को, वस्त्रधारी को? ये कहा जाए कि आप वस्त्रधारी हैं, मैं तो जान रहा हूं, लेकिन आपको भी अक्षत चढ़ाने से मुझे मोक्ष मिलता है, ऐसा है क्या? फिर असंयमी के लिए अक्षत ले जाना, वंदना करना अक्षत ठेवायचं आणि वंदन करायचं हे सगळं काय आहे? समय हो गया जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषय अंध रहे अब ना हम विषय रहे। नमस्तु नमस्तु, सैमी को नमस्तु।
हाँ, एडू बंद मैडम, एडू बंद।